ओम शांति। हजारों साल पहले सिकंदर भारत में आया था। वो समय वह समय था जबकि महात्मा बुद्ध इस धरती पर हुए लगभग 300 वर्ष हो चुके थे। फूल की वो सुगंध तब भी भारत में थी और जब सिकंदर भारत में आया बार बार उसे आश्चर्य लगा ऐसे विचित्र लोगों को यहां देखकर, ऐसे अद्भुत लोग, ऐसे अनूठे योगी और तपस्वी उसने कभी देखे नहीं थे। और उनको देख देख कर उसे लगता था कि इनके पास ऐसा कुछ है जो मेरे पास नहीं है। इनकी संपन्नता को देखकर स्वयं को विपन्न महसूस करता था। ऐसे ही अपनी यात्रा में गुजरते हुए एक बार एक फकीर को वो देखता है, अति ही साधारण नग्न फकीर, और उसको देखकर उसे बड़ा आश्चर्य होता है। ये कैसा अद्भुत व्यक्ति है कि जिसको देखते ही इसके चेहरे से शांति झलक रही है। उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण है। उसे देखकर बार बार स्वयं की संपदा को वो नगण्य महसूस करने लगा और उस फकीर से वो कहता है कि मुझे कोई ऐसी सौगात दे दो कि जो मेरे काम आए। तो वो फकीर, कहानी कहती है, अपनी झोली से निकालकर एक छोटा सा आईना उसे देता है। सिकंदर उस आईने को देखता है और कहता है, ऐसा साधारण आईना क्या तुम्हें पता है तुम किसको दे रहे हो? ऐसे न मालूम कितने आईने मेरे पास होंगे और इससे भी बड़े, आदमकद, लाइफ साइज। वो फकीर कहता है कि ये कोई साधारण सा आईना नहीं है। जब तुम्हारे मन में जीवन की इस यात्रा में चलते हुए यह प्रश्न उठे कि मैं कौन हूं, तब इस आईने में देखना तो तुम्हें इस उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और सौभाग्य से उसी रात्रि को सिकंदर अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करता है और उसे ये प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं, और वो आईना निकाल के स्वयं को उस आईने में देखता है। और कहानी कहती है कि उस दिन उसे यह पता चला कि वह कौन है। कहानी चाहे काल्पनिक होगी, झूठी भी हो सकती है, परंतु ऐसा वो कौन सा आईना है कि जिसे हम देखें तो उसमें हम स्वयं को देख सके। वो कोई स्थूल आईना वास्तव में हो नहीं सकता, क्योंकि कभी भी कोई भी स्थूल आईना हमें वह नहीं दिखा सकता कि जो हम वास्तव में है। ऐसा वो कौन सा आईना है कि जिसे हम देखें तो स्वयं को देख सके, स्वयं को वैसे ही देख सके जैसे कि हम हैं। वो कौन सा आईना है? ज्ञान का आईना। कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा था? नॉलेज का दर्पण। वो दर्पण कौन सा है? नॉलेज का दर्पण है। इसी दर्पण में हम स्वयं को देख सकते हैं। अब हम क्या है वह देख सकते हैं। हमारा वर्तमान क्या है वह हम देख सकते हैं। हम में क्या क्या कमियां हैं वह हम देख सकते हैं। तो ऐसा नॉलेज का दर्पण, ऐसा ज्ञान का दर्पण हम सबके पास बाबा ने हमें दिया है। इस दर्पण को हमें रोज रोज देखना है। एक दिन देखने से नहीं होगा, दो बार देखने से नहीं और तीन बार देखने से नहीं, परंतु हर पल प्रतिपल इस दर्पण में स्वयं को देखते रहना है। कहां कौन सी कमी है, स्व को दर्पण में देखो। जो कमी रह गई है उसे मिटाओ। परंतु मनुष्य का अहंकार इतना है कि वह स्वयं के वास्तविक स्वरूप को देखना नहीं चाहता। सूफी संत उस एक कुरूप स्त्री की कहानी बताते हैं कि जो स्त्री बहुत ही कुरूप है, परंतु उसे यह भ्रम था कि वह अति सुंदर है और वो किसी भी आईने को कभी देखना नहीं चाहती थी। उसे यह आभास था कि मेरी जो काया है दिव्य काया है, भौतिक काया नहीं है। एक बार जबरदस्ती किसी ने उसके सामने बड़ा आईना लाकर खड़ा कर दिया। आईने में अपनी ही प्रतिमा को देखकर इतना क्रोध से वो भर गई कि एक कुर्सी उठाई और आईने पर पटक दी। आईने टुकड़ा टुकड़े टुकड़े हो गया। पर आईने के टूट जाने से वास्तविकता नहीं बदलती है। जब तक हम स्वयं को स्वयं देखे नहीं जैसे कि हम हैं, अपनी सारी कमियों के साथ स्वयं को पहले स्वीकार करना होगा, ये मैं हूं। उसके बाद ही अगला चरण जो है, अपनी सारी कमियों को हम मिटा सकते हैं। जब तक हम स्वयं स्वयं को धोखा देते रहेंगे तब तक हम उन कमियों से कभी भी मुक्त नहीं हो सकेंगे। तो ये ज्ञान क्या है? दर्पण है। इस दर्पण में स्वयं को सदैव देखते रहना है। और आज की मुरली से ये ज्ञान क्या है? ज्ञान की क्या हो रही है? यहां पर बरसात हो रही है। क्या कर रही है ये बरसात? इस संपूर्ण पृथ्वी को शीतल कर रही है। क्योंकि इस धरती का क्या हाल है? इस समय तप रही है, जल रही है, तपिश है इस धरती पर। उस तपन में, उस आंच में काम विकार ने भारत को एकदम ही जला डाला। काम चिता पर बैठकर भारत जल मरा है। काम की तपत से भारत एकदम जल मरा है। तो ऐसी जहां तपिश है वहां पर बाप आया है क्या करने? ज्ञान की वर्षा करने, ज्ञान की बरसात करने। तो हमें क्या करना है फिर ऐसी बरसात में? क्या करना है? कुछ करना है। इस वर्षा में हमें भी कुछ करना है। प्रथम आषाढ़ी झड़ी है, चलो भीगे। क्या करना है? भीगना है इस वर्षा में। प्रथम, अभी भी बारिश का मौसम है, किसी भी मौसम किसी भी वक्त बारिश आ सकती है। प्रथम आषाढ़ी झड़ी है, चलो भीगे। पाल की ऋतु की खड़ी है, चलो भीगे। ग्रह मुहूर्त चौघड़ी देखे बिना ही, यह मिलन की शुभ घड़ी है, चलो भीगे। कौन सा मुहूर्त देखने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर मुहूर्त शुभ है, क्योंकि इस समय संगम युग चल रहा है। इसके लिए कवि कहता है, ग्रह को देखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मुहूर्त देखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, चौघड़ी कोई किताब देखने की जरूरत नहीं है, कोई पंचांग देखने की जरूरत नहीं है, देखे बिना ही मिलन की यह शुभ घड़ी है। इसके लिए क्या करो? चलो भीगे। पी पुकार प्राण पपीहा, और तुमको घरु कामों की पड़ी है। पपीहा पुकार रहा है और तुमको किसकी पड़ी है? घर कामों की पड़ी है। इसके लिए चलो भीगे। प्यार वाले इन क्षणों को उम्र अपी कुल उम्र से भी बड़ी है। ये जो प्यार वाले क्षण है इनकी उम्र तुम्हारी जितनी उम्र है उनसे भी बड़ी है। एक एक पल महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि वर्तमान किसका आधार है? भविष्य का आधार वर्तमान है। तो भविष्य का एक एक, वर्तमान का एक एक पल कैसा है? अमूल्य है। लाज की चलती मगर संकोच की, यह छोड़ दो जो हथकड़ी है, चलो भीगे। जो भी संकोच की हथकड़ियां है उन्हें क्या करो? तोड़ दो और क्या करो, चलो भीगे। यदि हम ही समझे ना ये संकेत गीले, यदि हम ही ये संकेत गीले क्या है समझ ना सके, स्वयं से धोखा धड़ी है, चलो भीगे। युगल अधरो प्यार की गीली रुबाई, आज पावस ने पड़ी है, चलो भीगे। युगल अधरो, युगल जो अधर है, दो होठ जो है, प्यार की गीली रुबाई, रुबाई अर्थात चार लाइनों की जो कविता होती है, चौपाई, जिसको फारसी में रुबाई कहते हैं। युगल अधरो प्यार की गीली रुबाई, आज पावस ने पड़ी है, बारिश ने ये रुबाई पड़ी है, चलो भीगे। यह तुम्हारा रूप पावस में नहाया, आग पर शबनम मड़ी है, चलो भीगे। तो ये समय कौन सा है, भीगने का समय है। ज्ञान सूर्य जहां आया है और बरसात जहां हो रही है, धरती जहां तप रही है, गोपिया गोपी गीतम में भागवत में श्री कृष्ण से कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम। गोपिया कहती है, हे गोविंद, तेरी जो कथा है वो अमृत के समान है, तेरी जो वाणी है और तेरी जो मुरली है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, हमारा जो जीवन है विकारों में तप रहा है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभृतम कल्मषापहम, तेरी वो कहानी, तेरी वो वाणी जिनका गायन कवियों ने किया है, और हमारा ये जीवन कल्मषापहम, कल्मष है, दूषित है, विकारी है, पतित है, कलंकित है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभृतम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादम भुवि गृणंति ते भूरिदा जना। ऐसी कहानी, ऐसी वाणी जिसे सुनते ही श्रवण मंगलम है वो। तो भगवान जो जो कहता है और उसकी जो जो वाणी है और उसके जो अमृत वचन है और वो जो ज्ञान की वर्षा करता है, वही हमारे जीवन की जो तपत है, जीवन में जो काम की अग्नि लगी हुई है उसको बुझाने वाली वो एक शीतलता है। सारी ही धरती को शीतल करने आया। आज की मुरली में बाबा ने कहा, केवल भारत को ही नहीं परंतु सारे विश्व को शीतलता प्रदान करती है यह ज्ञान की बरसात। तो स्वयं को पूछना है कि हम इस बरसात में भीग रहे हैं। हर घड़ी शुभ है, मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं है। हर समय प्रतिपल अहर्निश दिन रात स्वयं को डुबोना है, इस ज्ञान की वर्षा में स्वयं को भिगोना है। बहुत समय अकाल पड़ा रहा, आज बाबा ने कहा ना, 63 जन्म तुमने दुख भोगे है, अब बाप आया है तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरने के लिए। ऐसा बाप कहीं देखा? आज के मुरली के महावाक्य है, बाप आया है ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरने, ऐसा बाप कहीं देखा? तो बाप आया है, वो जो ज्ञान सुना रहा है वो तो ज्ञान सुनाने वाला जाने, और जो सुन रहे हैं वह जाने और न जाने कोई, आज बाबा ने कहा है। अमेरिका में 1956 में एक लेखक था रिचर्ड नैश, उसने एक नाटक लिखा था, द रेन मेकर, बरसात की रचना करने वाला। बाद में यह नाटक को मूवी में, फिल्म में परिवर्तित किया गया और इतना प्रसिद्ध हुआ कि 40 भाषाओं में इसको रूपांतरित हुआ, जो कि हिंदी भाषा में भी भारत में बना। ये कहानी बड़ी ही अद्भुत है, कईयों ने शायद ये फिल्म देखी भी होगी, बचपन में हमने भी कभी देखी थी अज्ञान में, बहुत जब छोटे थे। उस कहानी में उसका जो नायक है वो एक ऐसे गांव में प्रवेश करता है कि जिस गांव में अकाल पड़ा हुआ है, जिस गांव में सूखा है, जहां पर अनवृष्टि हुई है, अनवृष्टि है, बारिश हुई नहीं है बहुत समय से, चारों ओर हाहाकार है, दुख है। तो उस गांव में ऐसा एक व्यक्ति आता है, गांव वाले सभी उदास है, दुखी है, और जिस घर में आता है वहां के लोग तो बहुत ही ज्यादा दुखी है, और वहां एक स्त्री रहती है वो तो और ज्यादा दुखी है। तो वो आता है और कहता है कि मैं बारिश बेचने आया हूं। लोग कहते हैं ये कौन सी मूर्खता है, बारिश भी कभी बेची जाती है, वो कहते हैं अगर तुम मुझे 5,000 रुपए दोगे, हिंदी की कहानी में, विदेश की कहानी में $100। वो नायक कहता है कि यदि तुम मुझे 5,000 रुपए दोगे तो मैं ये बारिश ला सकता हूं। उसे पूछते हैं क्या मूर्ख बना रहे हो, मूर्ख बनाने के लिए हम ही तुम्हें मिले? वो कहते नहीं, 48 घंटों में मैं बारिश ला सकता हूं, परंतु नगद पैसा चाहिए मुझे, तो ही मैं बारिश लाऊंगा। उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक छोटा बच्चा होता है वही उस पर यकीन करता है कि हाँ ये बारिश ला सकता है, बाकी सब तो उसकी हंसी उड़ाते, कोई भी उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। वो छोटा बच्चा पूछता है कौन सी बारिश की बात कर रहे हो, क्या वही बारिश, सच्ची मुच्ची की बारिश? वो कहता है हाँ मेरे दोस्त वही बारिश, हाँ मेरे दोस्त वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ पर संभलती है, फिर आगे निकलती है, वही बारिश। ये बारिश अक्सर गीली होती है, इसे पानी भी कहते हैं। उर्दू में आप, मराठी में पानी, तमिल में कन्नी, कन्नड़ में नीर, बांग्ला में जौल कहते हैं, संस्कृत में जिसे वारी, नीर, जीवन, पै, अमृत, अंबु भी कहते हैं, ग्रीक में जिसे एक्वा प्यूरा कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे वाटर, फ्रेंच में जिसे ओ, और केमिस्ट्री में H2O कहते हैं। ये पानी आंखों से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पर चढ़ जाए तो रुहाब बन जाता है। हाँ, कोई शर्म से पानी पानी हो जाता है, और कभी कभी यह पानी सरकारी फाइलों में अपने कुएं समेत चोरी हो जाता है। पानी तो पानी है, पानी जिंदगानी है, इसलिए जब रूह की नदी सूखी हो और मन का हिरन प्यासा हो, इसलिए जब रूह की नदी सूखी हो और मन का हिरन प्यासा हो, दिमाग में लगी हो आग और प्यार की घाघर खाली हो, तब मैं हमेशा ये बारिश नाम का गीला पानी लेने की राय देता हूँ। मेरी मानिए तो ये बारिश खरीदिए, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश, सिर्फ 5,000 रुपए में, इससे कम में कोई दो तो चोर की सजा वो मेरी, आपकी जूती सिर पर मेरी, मेरी बारिश खरीदीजिए, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश। और कहानी में दिखाया है कि वो जो कहता है और बारिश हो जाती है, उस कहानी में दिखाया है, क्योंकि चारों ओर निराशा का वातावरण होता है, उसका उस जगह जो आगमन होता है वो चारों ओर जैसे हरियाली छा जाती है, पॉजिटिविटी जैसे ही कम्स एज अ वेव ऑफ पॉजिटिविटी। उस घर में जो निराशा होती है उसका देखने का जो दृष्टिकोण होता है वो संपूर्ण संपूर्ण सकारात्मक होता है और वो बारिश आ जाती है। जब रूह की नदी सूखी हो, जब मन का हिरन प्यासा हो, जब प्यार की घाघर खाली हो, जब दिमाग में लगी हो आग, कौन सी आग? विकारों की आग जहां लगी है, रूह की नदी जहां पर खाली है, जहां प्यार की घाघर खाली है, ऐसे समय बाबा आते हैं और क्या करते हैं? सस्ती टिकाऊ बाबा सस्ती नहीं, बाबा तो फ्री में बारिश करता है, हमें केवल करना क्या है? भीगना है, परंतु निकलना पड़ेगा घरों से बाहर। चलो भीगे, चलो भीगे, चलो भीगे, इस बारिश में चलो भीगे। तो बाबा ने कल किससे मुलाकात की? कौन से बच्चे बैठे थे? कल्प वृक्ष किसको देख रहा है? कल्प वृक्षपति किसको देख रहा है? कल्प वृक्ष के पहले पहले पत्तों को, फर्स्ट लीफ, कल्प वृक्ष के पहले पहले पत्तों को, नए वृक्ष की कलम को, विश्व के आधारमूर्त आत्माओं को, संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, ब्राह्मण आत्माओं को, ऐसी अमूल्य आत्माओं को बाबा देख रहे हैं। बच्चों की खुशी को देखकर बाप दादा भी खुश होते हैं, दादी से मुलाकात, और बच्चों के दुख को देखकर तरस पड़ता है उसे। वो तो नहीं कहा बाबा ने, परंतु बाबा ने कहा बच्चों की खुशी को देखकर बाबा खुश होते हैं। तो हम सब कौन हैं? कलम है नए वृक्ष की। तो अपने आप को इतना जिम्मेवार समझना है। ये तुम नहीं कह सकते कि हम तो छोटे, हम तो पीछे आए, हम तो अभी अभी आए हैं। जिम्मेवारी तो बड़ों की है। ये मुरली तीन शब्द पर आधारित है, तीन संख्या पर आधारित है। हर जगह तीन 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 आएगा। कहां कहां आएगा वो गिनते जाओ। तो तुम कहते हो वर्षा, तुम कहते हो प्राप्ति और तुम कहते हो बाप। तीनों लेने में तुम अधिकारी बनते हो और हक समझते हो अपना। वर्षा भी कौन सा? सतयुग का। कौन सा वर्षा? सूर्य वंश का वर्षा। वह सूर्य वंश जहां सूर्य भी सत्व प्रधान होता है। आज की मुरली जहां पर बाहर ही बाहर होती है, वहां पर कोई माथा खपाना नहीं पड़ता। कहा ना आज, वहां पर माथा खपाना नहीं पड़ता, वहां पर बाहर ही बाहर है, वहां पर सूर्य भी सत्व प्रधान है। तो तुम वर्षा कौन सा लेना चाहते हो? सूर्य वंश का। कोई तैयार नहीं है चंद्र वंश का वर्षा लेने के लिए। तो सबसे पहला वर्षा, दूसरा बाप और तीसरा प्राप्ति। बाप भी स्वयं को छोटा समझते हो तो क्या कहते हो? बाप तो छोटों का है, बाप पर हमारा पूर्ण अधिकार है, बाप पर हमारा पूर्ण हक है। तीन शब्द, हक और अधिकार किस पर? प्राप्ति पर, बाप पर और वर्षे पर। तो जैसे ये तीन है वैसे ही स्वयं को जिम्मेवार समझना है। किस कार्य में जिम्मेवार? कौन सी जिम्मेवारी का ताज? ताज, तख्त और तिलक। ताज कौन सा? जिम्मेवारी का ताज। कौन सी जिम्मेवारी? स्व परिवर्तन की जिम्मेवारी, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी, पवित्रता की का ताज और पढ़ाई का ताज और सेवा का ताज। प्रैक्टिकल में पढ़ाई और सेवा का ताज। पढ़ाई का कौन सा ताज है? पढ़ना पढ़ाना, यही ताज है। ज्ञान को धारण करना स्वयं में। चलो भीगे सस्ती टिकाऊ ऐसी बारिश, इस बारिश में डूबना, इस बारिश में समा जाना, स्वयं को भिगोना, यह है ज्ञान का या फिर पढ़ाई का। आज कहा ना, ये पढ़ाई तुम्हारी सबसे ऊंची पढ़ाई है। वहां जब मर्तबा पाते हैं तो समझते हैं कि इस पढ़ाई से ऊंची और कोई पढ़ाई नहीं है। तुम्हें भी पढ़ाई का नशा है, तुम भी समझते हो कि इस पढ़ाई से ऊंची और संसार में कोई पढ़ाई नहीं है। तो ताज कौन सा है? पढ़ाई का ताज, ज्ञान का ताज। तो बाबा कह रहे जिम्मेवारी भी किसकी? तो दो ताज पहनने, यहां सिंगल तो वहां सिंगल, यहां डबल तो वहां डबल, यहां अधूरा तो वहां अधूरा, यहां संपूर्ण तो वहां संपूर्ण। क्योंकि भविष्य का आधार वर्तमान है। भविष्य है तो वर्तमान है तो भविष्य निश्चित है। सब कुछ यहां पर आधारित है। पहला ताज, दूसरा तख्त। उसमें एक प्यूरिटी की बात कही, आज का स्लोगन प्यूरिटी की बड़ी सूक्ष्म परिभाषा बाबा ने दी है। स्वयं व्यर्थ में है और दूसरों को के व्यर्थ चलाने में जो निमित्त बन रहे, ये भी क्या है? अपवित्रता। कितनी सूक्ष्म परिभाषा है, व्यर्थ से संबंध जोड़ा है। तो ताज, फिर है तख्त। यहां सदाकाल का तख्त तो वहां भी सदाकाल का तख्त, डबल तख्त। कौन सा तख्त? एक तो अकाल का तख्त और दूसरा दिल का तख्त। अकाल तख्त और दिल तख्त का भी संबंध है। आत्माभिमानी बनना अर्थात परमात्मा प्रेमी बनना, परमात्मा के प्रिय बनना अर्थात उसके हृदय सिंहासन पर विराजमान होना अर्थात परमात्मा दिल तख्त नशीन बनना। तो यहां अगर सदा का है तो वहां सदा का, यहां अगर कभी कभी तो वहां भी कभी कभी। तीसरा तिलक। तिलक भी कैसा हो? अमिट। तिलक भी कैसा हो? अविनाशी। कौन सा तिलक और कौन सा सुहाग? देवों के देवों का सुहाग और ताज कौन सा? और भाग्य का कौन सा भाग्य? कौन सा भाग्य? ईश्वरीय संतान होने का भाग्य। और कौन सा भाग्य? इसी मुरली से पार्टियों से मुलाकात। तुम्हें कौन सा खजाना मिला है? सबसे बड़े से बड़ा खजाना तुम्हें मिला है। कौन सा खजाना है वो? वैसा खजाना जो आज तक किसी को नहीं मिला। ये खजाना मिला अर्थात सब कुछ मिला, ये खजाना नहीं अर्थात कुछ भी नहीं। वो कौन सा खजाना है? बाप स्वयं भी वो खजाना है। मेरा बाबा ये भी खजाना है। तो तुम्हें ये खजाना मिला किसी गांव में। एक दिन सुबह सुबह आकाशवाणी हुई, और वो आकाशवाणी एक बार नहीं परंतु सारे दिन भर बार बार होती रही। आकाशवाणी ने कहा, हे धरती के वासियों, जिन्हें जिन्हें अपने दुखों से मुक्त होना है, वह वह अपने दुखों की गठरी, कल्पना की गठरी में अपने दुखों को डाले और गांव के बाहर फेंक कर आए, और फिर रात्रि सूर्योदय से पहले दूसरे दिन के जो जो सुख जिसे जिसे चाहिए वो उसी गठरी में भरकर वापस आ जाए। और ये भविष्यवाणी सारे दिन भर हुई। कल्प वृक्ष का अवतरण है धरती पर, जिसको जिसको जो जो सुख चाहिए वो ले सकता है, और जो जो दुख नहीं चाहिए वो उस कल्पना की गठरी में भरो, सारे दिन भर भरो। निकलना है रात को, जाने का समय है रात का, वापस आने का समय है सूर्योदय से पहले। रातों रात ये कार्य करना है। अविश्वासी भी विश्वासी बन जाते हैं, नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं, सम्राट भी सोचने लगता है मेरे भी बहुत दुख है, क्यों ना मैं भी जाऊं। तो सारा के सारा गांव भागता है पागलों की तरह गांव के बाहर, और सभी अपने सारे दिन भर में इकट्ठे किए हुए दुख गठरी में भरते हैं और जितना दूर हो सके फेंकते हैं, और फिर होड़ में लगते हैं कि कौन से सुख ले, कौन कौन से सुख उन गठरियों में भरे, और सूर्योदय से पहले गांव में वापस आ जाते हैं। और जब वापस आते हैं तो आश्चर्य देखते हैं कि वास्तव में ऐसा ही हुआ है। जो उनकी झोपड़ियां थी, झुग्गी झोपड़ियां, वो सभी अब स्वर्ण महलों में परिवर्तन हो गई है। चारों ओर देखते हैं तो जहां तहां स्वर्ण के मंदिर ही स्वर्ण के महल दिखाई देने लगते। हरेक के घर में अशरफिया, सोने, हीरे और चांदी से भरे हुए हो जाते हैं। परंतु एक और घटना घटती है साथ में। यह आश्चर्य तो होता है पर एक महाआश्चर्य होता है। महाआश्चर्य ये कि हरेक जो अब सुखी हो गया है देखता है कि बाजू वाला जो है वो मेरे से अधिक सुखी है। परिस्थिति तो बदल गई, व्यक्ति नहीं बदले थे, परिस्थिति बदली थी केवल। व्यक्ति तो वही थे, आदमी तो वही था, तो देखता है बाजू वाले का सुख मेरे से ज्यादा है, इसके लिए अब ये दुख उनको पकड़ लेता है। परंतु दिखाते नहीं है पर अंदर से दुखी है। सारे गांव में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति होता है, एक महायोगी, एक साधु, एक योगी, एक तपस्वी, वो नहीं भागता। सारे लोग उसको कहते हैं, अरे तुम भी भागो, देखो सम्राट भी भाग रहा है, कब तक इस झोपड़ी में तुम रहोगे, क्या तुम्हें नहीं चाहिए कुछ? वो कहता है, जो संपदा मैंने पाई है, वो आंतरिक संपदा है, जो आनंद को मैंने उपलब्ध किया है, और जिस परमात्मा की मुझे खोज थी वो मैंने पा लिया है, और उसे मैंने अपने भीतर पाया है, और उसकी खोज अब मैं बाहर नहीं कर सकता, इसके लिए मैं नहीं भागूंगा, तुम भाग सकते हो। और जब ये तो पहले कहते हैं उससे, और जब वो सारा सामान लेकर आ जाते हैं, कहते हैं उससे, पहले ही कहा था तुमसे, चलो मेरे साथ, क्या अब भी तुम अपनी भूल को नहीं समझे? गांव वाले उसको आके कहते हैं, क्या अब भी ये देखने के बाद, हमारी ये स्थिति देखने के बाद अब भी तुम इस भूल को नहीं समझे? वो तपस्वी कहता है, यही तो प्रश्न मैं तुमसे कह रहा हूं कि क्या तुम अब भी अपनी भूल को नहीं समझे? और बाबा भी हमसे यही प्रश्न पूछ रहा है, कब तक भागोगे इस संसार की दौड़ में, क्या अब भी अपनी भूल को नहीं समझे? तुम्हें मिला कौन है, क्या इसकी कोई खबर है? जो मिला है उसे संसार की आत्माएं अब तक कभी ढूंढ रही है। जो मिला है और जो खजाना वो दे रहा है, वो स्वयं ही सबसे बड़ा खजाना है। तो इस संसार का बड़े से बड़ा खजाना कौन सा है? बाप है। ये खजाना है तो सब कुछ है। ये खजाना है ऐसी संपन्नता अपने में अनुभव करते हो ब्राह्मण अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ये तुम्हारा गीत है। और नृत्य कौन सा है हमारा, बालक सो मालिक। बालक बनना अर्थात ही मालिक बनना है। आज बाबा ने कहा ना, मैं भी तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूं, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम। बाप ओबीडियंट सर्वेंट बनकर आया है, और क्या चाहिए। तो सबसे बड़ा खजाना है बाप, ये खजाना है तो सब कुछ है। सतयुग में भी इस खजाने की अप्राप्ति है, सतयुग में भी इस खजाने की अप्राप्ति है। तो ये इस संसार का सबसे बड़ा खजाना है। और हमारा नृत्य कौन सा है, नाच किस में करना है हमको, बालक सो मालिक। बालक बन जाना ही मालिक बन जाना है। तो हम बात कर रहे थे तिलक की, तिलक कौन सा, भाग्य का तिलक। सुहाग कौन सा, देवों के देवों का सुहाग। और माया इसे मिटा तो नहीं देती है, बाबा ने प्रश्न पूछा है इस तिलक को। यहां अगर तिलकधारी है तो वहां भी तिलकधारी होंगे, यहां अगर तिलकधारी है तो सतयुग में हर जन्म में केवल राजा नहीं, रॉयल फैमिली भी कौन सा दिवस मनाएगी, राज्य तिलक दिवस मनाएगी। तो राज्य तिलक दिवस का वहां उत्सव होगा, और यहां है उत्साह तीन चीजों का। फिर से तीन बातें यहां आई है, कौन सी तीन बातें, वो एक है बाबा का मिलन, दूसरा है सबने मुरली सुनी भी है और पढ़ी भी है तो बताओ, दूसरा है स्वयं की चढ़ती कला, और तीसरा है तन मन धन से सेवा। ये तीन का क्या है यहां पर, उत्साह है यहां पर। तो वहां क्या होगा, उत्साह होगा, चढ़ती कला, मिलन और सेवा। उसके बाद में और बाबा ने इन तीन चीजों का वर्णन किया है, तन मन धन की सेवा। कल सूरज भाई भी भाई जी भी इस बात पर चर्चा कर रहे थे, तन मन और धन, आदि से अब तक और अब से अंत तक कितना समय इस तन को सेवा में लगाया, यह है तन। फिर है मन, मन से दो बातें, एक है याद मन मना भाव, और दूसरा है मनसा सेवा। मनसा सेवा भी कितनी सहज बताई, शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना, वो भी हद की नहीं बेहद की, अर्थात सबके लिए। इसी मुरली में पार्टी दादी से मुलाकात में बाबा ने कहा है दो प्रकार की सेवा एक साथ करनी है, मनसा सेवा भी करनी है तो वाचा सेवा भी करनी है। एक सेवा सिंगल का सिंगल रिजल्ट और डबल की दुगुनी रिजल्ट होगी, सफलता होगी, यही अंतिम फाइनल सेवा है। फाइनल अंतिम सेवा जो है वो कौन सी है, मनसा सेवा है। तो मनसा सेवा भी हमारी होती रहे, वो भी बेहद की होती रहे, इसके लिए हमारा अमृत वेला बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, जिसे हमें विश्व की आत्माओं को सकाश देनी है। वो की गा रही है और पुकार रही है, कौन सा गीत है उनका, भक्तों का, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई है भगवान। इसी मुरली में बाबा ने कहा बाप देख रहे है और सुन भी रहे है, बाबा को कह रहे हैं ना देख तेरे तो बाप देख रहे है। और आज की मुरली में एक बहुत ही सुंदर महावाक्य है, सृष्टि कैसे बदल गई है, राजाई कहाँ चली गई, बाबा ने प्रश्न किया है, ये सृष्टि कैसे बदल गई है, प्रश्न मार्क, प्रश्न चिन्ह, ये सृष्टि कैसे बदल गई है, वह राजाई कहाँ चली गई, प्रश्न पूछा है बाबा ने। तो ये संसार का हाल हो गया है, हर साधन असार है, किसी में सार नहीं रहा। तो जब संसार की ऐसी हालत है तो हमारा कर्तव्य है मनसा का, सेवा का, मनसा सकाश देने का, ये हमारी जिम्मेवारी है। कोई भी हो, जो चाहे मधुबन निवासी, चाहे सेंटर निवासी, चाहे बहन भाई कुमार कुमारी, समर्पित गैर समर्पित, जो भी, सबका ये कर्तव्य है। तो कहां पर थे हम, तन मन और फिर है धन की सेवा। स्वार्थ में तो नहीं लगाते, अमानत में ख्यानत तो नहीं करते, हद और बेहद की तो नहीं करते। यहाँ पर भी बाबा ने ये सारे प्रश्न पूछे, हमारे जीवन में जो स्थूल धन भी है वो सारा ईश्वरीय कार्य में भी लगे, उससे भी बहुत बड़ा पुण्य होगा। गरीब का 10 रुपया तो साहूकार का 1000, मर्तबा एक ही है। अभी अभी मुरली चली थी साकार, बिजली चली गई, तो बाबा ने क्या किया, फिर प्रश्न पूछा। जब भी बिजली जाती है तो बाबा के कुछ प्रश्न होते हैं, सीधा मुरली उस पर होती है। बाबा के लिए तो बस बाबा को कोई एक चीज चाहिए, बाबा जिस पे अपनी टॉपिक टंगा देता है, खूंटी होती है ना, तो उसमें ज्ञान की कोई भी टॉपिक बाबा टांग सकता है। तो बाबा पूछ रहे, बुद्धि की हलचल तो नहीं होती, यह है ही असार संसार, यहां की हर वस्तु असार है, इस संसार को असार समझना यही वैराग है। इस संसार के प्रति हमारे अंदर निरंतर एक धधकता हुआ वैराग चाहिए। जैसा ही वैराग कम होगा साधनाएं कम हो जाएगी, इसके लिए वैराग निरंतर हो। ये एक सूक्ष्म और आंतरिक पुरुषार्थ है, हमारा आंतरिक पुरुषार्थ हो वैराग का। उसके बाद में बाबा पार्टियों से मिल रहे, प्रथम पार्टी हो गया, उसके बाद में कुछ बातें और रह गई है। बाबा ने यहां चेकिंग करने के लिए कहा था कि चेकिंग करो, ये जो है तन मन धन ताज तख्त और तिलक, इसकी चेकिंग के आधार से फिर पद प्राप्त होगा, वो भी फुल। फुल में भी तीन बातें, फुल राज्य, फुल प्रारब्ध, फुल समय, तीन बातें। और तीन बातें कही थी, वन वन वन, वन प्रकृति के सुख भी वन, सवंत भी वन, तो राज्य भाग्य प्रारब्ध भी वन, जिनका ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ होगा। तो स्वयं को देखो, 16 श्रृंगार है, स्वयं को देखो, 16 कलाएं हैं, स्वयं को स्व के दर्पण में देखो, स्व को दर्पण में देखो, ये यहां है तो वहां होगा, यहां नहीं तो वहां नहीं, ये सारी चेकिंग यहां बैठकर हमको करनी है। दूसरे नंबर की पार्टी, क्या कहा बाबा ने उसमें, निश्चय की बात की है, फेथ और विक्ट्री, जहां निश्चय है वहां पर विजय है। तीन बातें, अचल, अडोल और महावीर, अचल, अडोल और महावीर, उनको कौन सा निश्चय होगा, कौन सी बात होगी उनकी निशानी, व्यर्थ संकल्प और स्वप्न में भी नहीं आएगा, निरंतर चेकिंग। आज वरदान में कहा ना, रजिस्टर को निरंतर क्या करते रहो, साफ करते रहो। किससे साफ करते रहो, साइलेंस की शक्ति से साफ करते रहो। कैसे साफ करते रहो, कौन सा उदाहरण दिया, जैसे साइंस वाले कोई भी अक्षर लिखते हैं तो उसको मिटाते हैं, वैसे यहां भी साफ करते रहो। आज का व्यर्थ संकल्प, आज का व्यर्थ कर्म, उसकी लीक भी कल पर ना जाए। लीक, लीक पता है ना, बार बार चलते चलते जो पगडंडी तैयार हो जाती है, जो रास्ता तैयार हो जाता है, उसे लीक कहते हैं। लीक का एक अर्थ लकीर भी है, तो लीक भी, उसका इतना असर भी दूसरे दिन न चले, इतना व्यर्थ से मुक्त। तो अचल, अडोल, महावीर, तीन बातें। फिर बाबा ने यहां कल्याण की बात की, जो भी यहां हो रहा है उसमें क्या है, कल्याण समाया हुआ। एक बार कहानी सुनाई थी राम की इच्छा वाली, सबको पता होगी, अभी नहीं सुनाएंगे पर वो अभी दूसरी बताएंगे। राम की इच्छा हो गई, राम की इच्छा से, राम की इच्छा से ही एक बार सुना दी। तो भक्तों में भी ये बात बहुत गहरी होती है। ऐसा ही एक भक्त किसी गांव में था, जिसका बेटा बहुत दूर पढ़ाई करने चला गया, तो लोग तो जानबूझकर उसके पास आते थे और उसे सांत्वना देते थे कि अब तक आपका बेटा आया नहीं, हमको नहीं लगता वो आएगा। तो वो कहता था, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ये उसका स्लोगन था, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और एक दिन अचानक उसका बेटा आ जाता है, तो सारे लोग फिर से आते बधाई देने के लिए, बहुत अच्छा हुआ आपका बेटा आ गया, देखो कितनी अच्छी बात है। वो कहता है फिर से शांत, जो होगा अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। लोगों को आश्चर्य लगता है इसके, इस तरह की प्रतिक्रिया देखकर। एक दिन वो बेटा घोड़े से जाते रहता है और गिरता है, उसकी टांग टूट जाती है। फिर से लोग आ जाते हैं आस पड़ोस वाले, सांत्वना जताने के लिए, मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए, बहुत दुखी होते हैं और उससे कहते हैं कि देखो आपका बेटा, हम बहुत दुखी है। वो कहता है इसमें दुख की क्या बात है, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। तो अचानक कोई राजा आक्रमण करता है और इस राजा के सिपाही नए नए युवकों को सेना में भर्ती करने के लिए आते, इसको भी पकड़ कर ले जाते। तो फिर से गांव वाले आ जाते हैं और कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ, देखा इतने समय के बाद तो बेटा आया था और अभी सैनिक उड़ से उठा के ले गए। पर सैनिक जब देखते हैं कि इसकी टांग टूटी है तो कुछ काम का नहीं है, फिर से उसे छोड़ देते, फिर से गांव वाले आते। और फिर से उसे कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, परंतु हर बार उसका एक ही उत्तर है, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। इस ड्रामा में अकल्याण है ही नहीं, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। जैसे बाबा चलाए वैसे हम चलेंगे, जो वो कराए वो हम करेंगे। जी हुजूर और जी हाजिर। एक सूफी संत हुआ है, कवि हुआ है, रूमी, उसने अपनी एक फारसी की एक कविता में, जिसका इंग्लिश रूपांतरण हुआ है, जो फारसी तो हमें पता नहीं परंतु इंग्लिश रूपांतरण में इस्लाम मोहम्मद पैगंबर के जीवन की कहानी उसमें लिखी है। उसने लिखा है जॉय एट द डिसअपॉइंटेड, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है जॉय एट द डिसअपॉइंटमेंट, ऐसा वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसका। तो उसमें लिखा है कि मोहम्मद पैगंबर साहब एक बार नमाज पढ़ रहे थे और अपने जूते बाहर निकाले हुए थे, और जैसे ही नमाज पूरी होती है और जैसा जूता लेने जाते हैं, अचानक वहां से एक चील आती है और जूते को दूर फेंक देती है। एक क्षण के लिए उनके मन में उसके प्रति क्रोध जागृत होता है, परंतु दिखाया गया है कि उस जूता गिरता है और जूते से एक सांप निकलकर दूर चला जाता है। कविता वहीं पूरी होती है कि फिर उसके मन में वो भाव जागृत होता है कि मेरे मन में एक क्षण के लिए उस चील के प्रति घृणा, नफरत और ऐसे भाव, नफरत के भाव उत्पन्न हुए थे, क्रोध हो आया था मन में, परंतु जो वास्तविक था वो कुछ और ही थी। अगर हाथ उसने डाला होता तो वो शायद मृत्यु को प्राप्त हुआ होता। रूमी फारसी कवि, वो लिखता है कि ऐसे ही धन्य भाव से, अहोभाव से, कृतज्ञता के भाव से मोहम्मद भर जाते हैं। तो जिस ड्रामा में जो भी होता है, बाबा ने कहा अब तुम नहीं जानते पर एक दिन जानोगे, जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा छिपा हुआ है। इसके लिए जी हाजिर और जी हुजूर। तीसरे नंबर की पार्टी, स्वयं को कोटो में कोई और कोई में कोई समझते हो। उसमें भी फिर तीन बातें और, कौन सी तीन बातें? एक है ज्ञान के आधार से समझना, जानना, पहला है जानना, दूसरा है दूसरों के अनुभव के आधार से मानना, और तीसरा है स्व के अनुभव से महसूस करना। तीन बातें, कोटो में कोई और कोई में कोई, ऐसी हम आत्माएं हैं, भगवान द्वारा चुनी गई आत्माएं हैं, ऐसा हमको नशा रहता है। और ऐसी आत्माओं की निशानी क्या है? मुरली पड़ी है ना, कि कम पड़ी है थोड़ी, कि बारिश में नई बारिश आ गई तो पुरानी कहां चली गई पता नहीं, ऐसे तो नहीं। एक कौवा इतना दुखी था, सोचता था मैं इतना काला क्यों, मैं इतना काला क्यों, जब भी उड़ता था यहां से वहां और वहां से वहां और यहां से वहां, बहुत ही दुखी था। एक बार एक सरोवर में आया और देखता है हंस को, ऐसा सुंदर पक्षी उसने जीवन में नहीं देखा था, और हंस के पास जाता है कि मुझे लगता है कि इस संसार में सबसे सुंदर और सबसे सुखी केवल तुम ही हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारा इतना सुंदर रंग है। वो हंस कहता है मैं भी यही सोचता था कि इस संसार में मैं ही सुखी हूं और मैं ही सुंदर हूं, जब तक मैंने उस तोते को नहीं देखा तब तक, क्योंकि उस तोते के दो रंग है, मेरा तो एक ही रंग है, वो दोनों ही रंग उसके बहुत खूबसूरत है। कौवा निकल पड़ता है तोते की तलाश में और तोते से मिलता है और कहता है कि मैंने सुना है कि इस संसार में तुम ही सबसे अधिक सुखी और सबसे अधिक सुंदर हो। तोता कहता है मैं भी यही समझता था कि इस संसार में मैं ही सबसे सुंदर और मैं ही सबसे सुखी हूं, जब तक मैंने उस मोर को नहीं देख लिया, जो कि कितने ही रंग है उसमें और एक से बढ़कर एक रंग है। कौवा निकलता है दूर दूर ढूंढता है और फिर एक चिड़ियाघर में पहुंचता है मोर के पास, और मोर से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम इस संसार में सबसे सुखी और सबसे सुंदर पक्षी हो, और देखो तो कितने हजारों लोग तुम्हें देखने आए हैं। मोर क्या कहता होगा? एंजल, एंजल बताएगी क्या कहता होगा मोर, बताओ एंजल पता है ना सबको, एंजल खड़े हो जाओ, सबको देखने दो, ये है एंजल 10 साल की, उड़ उड़ कर आई है यहाँ पर जम्मू से। तो वो मोर क्या कहेगा? मोर कहता है मैं भी यही सोचता था, मैं भी यही सोचता था, मैं इतना सुंदर हूं पर इस सुंदरता के वजह से ही इस कारागृह में हूं। मैं उड़ नहीं सकता, मुझे तो ईर्ष्या है उस कौवे से जो मुक्त और विमुक्त गगन में उड़ता है, और मुझे तो लगता है ये कौवा ही सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत इस संसार में है और सबसे खुश है। इस संसार में हम कोटों में कोई और कोई में कोई आत्माएं हैं, ऐसा स्वयं को स्व के अनुभव से महसूस करते हो या फिर ये समझते हो पता नहीं कहां फंस गए, पहले ही ठीक थे, ऐसा तो नहीं समझते कि समझते हैं माताएं? थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल नहीं। तो इनकी निशानी है क्षमा पर फिदा होने वाले, मिटने वाले, जलने वाले, मरने वाले, परिवर्तन होने वाले, ये है उनकी निशानियां। उसी थर्ड पार्टी में दूसरा पैराग्राफ, एक स्थिति बनाने का साधन क्या है, इसमें भी तीन बातें, एक राज्य, एक बाप और एक घर। साधन क्या है? स्वयं को क्या समझो? ट्रस्टी समझो। क्या नहीं समझो? गृहस्थी नहीं समझो, स्वयं को ट्रस्टी समझना। गृहस्थी अर्थात मैंपन, गृहस्थी अर्थात बोझ, गृहस्थी अर्थात मेरा मेरा मेरापन, गृहस्थी अर्थात ममता, गृहस्थी अर्थात मेरा घर मेरा परिवार, और ट्रस्टी अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। ट्रस्टी को हिंदी में क्या कहा जाता है? न्यासी। न्यासी अर्थात मेरा कुछ भी नहीं, उसी से संन्यास शब्द निकला है, संन्यासी। संन्यासी अर्थात जिसका इस संसार में कुछ भी नहीं है, ऐसा वो। तो मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं, जो भी है वो सब प्रभु की कृपा है, उसका प्रसाद है, उसकी इनायतें है, हमारा इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो स्वयं को क्या समझना है? ट्रस्टी समझना है। फिर क्या होगा? उड़ती कला। फिर क्या होगा? बोझ मुक्त स्थिति, निर्भार और निर्बोझ स्थिति का अनुभव होगा, रुकेंगे नहीं कभी। तो ये बात, और तीन बातें बीच में थी वो भूल गए, राजा महाराजा और विश्व महाराजा, ताज के वहां पर थी ना ये तीन बातें। तो जो कुछ वहां होने वाला है उसका आधार यहां है, जो कुछ वहां होने वाला है उसका आधार यहां, उसकी और एक बात है, वो कौन सी? दादी से मुलाकात। वहां भक्त जैसे यहां भी अलग अलग स्थानों से बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, तो यहां भी भक्ति में फिर जड़ चित्रों का आह्वान करेंगे और ऐसा अनुभव करेंगे कि जैसे इनमें क्या है? जान है। तो दादियों को कि दादी से क्या कह रहे हैं? बाबा यहां से कहीं जाना, किसी के दिल को खुश करना आत्माओं के, यह भी क्या है? पुण्य है, यह भी पुण्य है। और जिस दिन जाने का बंद होगा उस दिन स्वतः ही बंद हो जाएगा, जैसे शिलुबेन जी ने भी उस दिन क्लास में बताई थी ना कहानी ब्रह्मा बाबा की। तो जब जाने का बंद नहीं जाने का होगा तब नहीं जाना होगा, तैयारी होगी तो भी नहीं जाने का होगा, जब ड्रामा पूर्णाहुति को पहुंचेगा तब। और फिर यहाँ पर जो सूक्ष्म राज बाबा ने कहा है, दो प्रकार की सेवा है, मनसा सेवा और वाणी की सेवा। तो वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा की हो, ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आती है, परंतु बाबा ने एक सूक्ष्म बात यहां कही है कि मनसा की सेवा में बोल न निकले यह भी ना हो। इसका क्या अर्थ है? जब बोल रहे हैं, जब वाचा की सेवा कर रहे हैं, तब मनसा की सेवा करो, तब मनसा की सेवा न हो ये नहीं होना चाहिए। मतलब वाणी की सेवा जब कर रहे हो तब मनसा की सेवा साथ साथ हो, ये तो ठीक है, परंतु जब मनसा की सेवा हो तब बोल न निकले यह भी ना हो। पढ़ा ना सबने? एक सेकंड में आवाज से परे तो एक सेकंड में आवाज में भी आ जाए, अंतर्मुखी होकर बाह्य मुक्ता में आ जाए। अभी अभी अव्यक्त वतन वासी, तो अभी अभी इस धरती के वासी, इस तन में आना और इस तन से बाहर जाना ये भी अभ्यास हो। जाने का तो अभ्यास है ही, परंतु आने का भी अभ्यास है, क्योंकि वहां लंबे समय रहने के बाद नीचे आने की इच्छा नहीं होती है फिर, जितना जितना अव्यक्त स्थिति का अभ्यास होता है, अगर कोई सोचे मैं 7 दिन मौन रखूं, संपूर्ण मौन, तो 8वें दिन उसे बोलने की इच्छा नहीं होगी। बोल मौन में वो शक्ति है, वो पावर है, साइलेंस की वो पावर है उसमें। परंतु बाबा वह भी नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? अभी अभी उधर तो अभी अभी इधर, अभी अभी फर्स्ट फ्लोर, अभी अभी सेकंड तबका और अभी अभी थर्ड तबका, इधर से वहां और वहां से वहां। यह अभ्यास है, यही इस ज्ञान की इस ज्ञान का यह सौंदर्य है। सन्यासियों का यह ज्ञान नहीं, यह ज्ञान अति भिन्न है, अनूठा है। सन्यासियों का जो ज्ञान है वो सूखा ज्ञान है, सन्यासियों के जो धर्म है वो सूखे धर्म है। हमारा जो धर्म है वो नाचने और गाने का धर्म है। भगवान ने जिस धर्म की स्थापना की है संगम पर आकर, वो हंसने हंसाने का धर्म है। अभी अभी इधर तो अभी अभी उधर, ऐसा ये धर्म है। तो ये अभ्यास भी करना है। इसी अभ्यास को अभी हम करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल मेरे ख्याल से सब कुछ हो गया है, एक या दो बातें हैं जो कि ट्रैफिक कंट्रोल की बात करेंगे। तो अभी फिर से आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना है और स्वयं को रुकुटी के मध्य देखते हुए सोचो कि ज्ञान सूर्य बाबा से ज्ञान की वर्षा हो रही है और चलो भीगे।
प्रभु का ध्यान।
मुरली का सार स्वयं को जिम्मेवार आत्मा समझना है, स्वयं को इस कल्प वृक्ष का कलम समझना है, स्वयं को पहले पहले पत्ते समझना है, स्वयं को निरंतर ताजधारी सारी जिम्मेवारियों का ताज पहनकर रखना है, स्वयं को तख्त नशीन रखना है और स्वयं को तिलकधारी रखना है। ये आत्मिक भाग्य का तिलक निरंतर लगा हुआ हो, ये कभी मिटे ना। उसके बाद में निश्चय की बात, स्वयं को 16 कलाओं से श्रृंगारित करना है, स्वयं को 16 कला और 16 श्रृंगार दोनों से सजाना है, अपना जो वर्तमान है उसे श्रेष्ठ बनाना है। निश्चय की बात बाबा ने कही, नशे की बात बाबा ने कही, उसके बाद में फिदा होने की बात बाबा ने कही, उसके बाद में बाबा कैसे खजाना है, इस खजाने को बार बार इमर्ज करना। इसके लिए एक सूक्ष्म योग का अभ्यास है कि अमृत वेले जब हम परम धाम की स्थिति में होते हैं तो सोचो कि वो जो ज्योति बिंदु है जैसे सर्व खजाने उसमें है और मैं बिंदु और वह भी बिंदु उसके सम्मुख हूँ और सारे के सारे खजाने प्रेम के, ज्ञान के, सुख के, शांति के, आनंद के सब कुछ मुझ में समा रहे हैं। यह एक अभ्यास करना है और आज की मुरली से जिसको अगर एक दो मुख्य पॉइंट याद आती हो तो बताइए। आज की मुरली से साकार वाणी जो हमने नहीं बोली यहां पर वो हो गए, जो नहीं बोली वो पॉइंट्स। हो गया। अब मुरझाना नहीं है। माया क्या करती है, माया का गोला लगा और ये गिरे, ये मरे और मुरझाए। तो देखना है कि माया हमारे जीवन में कहीं ना आए। अगर कोई आ जाए दर्पण ज्ञान का, कहां कहां माया आ रही है, दर्पण रखो, देखो और उसे समाप्त करो। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट। और अब बाबा ने गुरुमुखी जो मूल मंत्र जो है उसको याद किया, जिसको कहा कि उसमें जो शब्द आता है निरहंकारी, तो वो लोग तो अपने पद का कितना अहंकार करते हैं और बाबा को बाबा देखो कितना निरहंकारी है, वो तुम्हारा गुलाम बनकर आए, तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट बनकर आए। ये जो मूल मंत्र है सिख धर्म का सबसे पूरा गुरु ग्रंथ साहिब में 100 से भी अधिक बार ये मंत्र आया है और ये इस मंत्र की जो रचना हुई है वो एक उसकी एक बहुत ही अद्भुत कहानी है, वो कभी हम बाद में सुनाएंगे, अभी उसका समय नहीं है। और बहुत ही सुंदर इसकी कहानी है कि गुरु नानक को जैसे ही एनलाइटमेंट जिसको कहते हैं, जैसे बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ था वैसे गुरु नानक को उनकी 36 साल की उम्र में जो एनलाइटमेंट हुआ था ये प्रथम मंत्र जैसे उनको प्राप्त हुआ था, उसकी एक सुंदर कहानी है जो कभी हम बाद में सुनाएंगे। तो बाबा ने यहाँ पर उसके निरंकारी शब्द का विस्तार किया कि बाप जैसे निरंकारी है तुम्हें भी निरंकारी बनना है, कि ये पद और पोजीशन अल्पकाल श्रणभंगुर वर्षा है, इसका अहंकार नहीं करना है। स्वच्छता सफाई सभी को पसंद है, वो वरदान में बोला। और हो गया। और निर्विकारी बनना है। और रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है, बोल दिया पर वो पॉइंट भी। और आत्म अभिमानी तो ही बाप को याद करने के, तुम अब जानते हो कि आत्म अभिमानी बनोगे तो ही तुम बाप को याद कर सकोगे। बीती को बिंदी लगाना है, फुल स्टॉप। व्यर्थ संकल्प स्लोगन में बाबा ने कहा, वो हमने बोल दिया मुरली में ही, कि ये भी अपवित्रता है, किसी के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बन जाना। खुद तो आराम से सो गए परंतु हमारी वजह से दूसरे परेशान है तो ये भी अपवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता में व्यर्थ भी ना हो, यहां तक बाबा ने कभी कहा है साधारणता भी अपवित्रता है, इसके लिए साधारणता भी ना हो। तो रात को सोने से पहले आज की साकार मुरली कम से कम, कल की नहीं तो। थोड़ी सी मन ही मन रिवाइज करना, और जब यहाँ बैठ के सुनते हो या बाबा की मुरली सुनते हो या कहीं पर भी कोई भी किसी की भी क्लास या कोई भी ज्ञान की पॉइंट सुनते हो, ऐसे सुनो इतनी समग्रता से, इतनी इंटीग्रिटी से, इतने एक रस भाव से कि जैसे उस सुनने में हम लीन हो जाए। मन में जो उहापोह, मन में जो उधेड़बुन होती है संकल्पों की, वो एक तरफ रख दो, क्योंकि जब हम सुन रहे होते मन में और बहुत सारी चीजें भी चालू होती है साथ साथ, ये भी करना है, वो भी करना है, क्लास पूरा होने के बाद ये करना है, वो करना है, वो सब बाजू में रखकर जब ज्ञान सुनते हो, मुरली सुनते हो, ऐसे सुनो कि जैसे संपूर्ण ऑल ईयर्स, इंग्लिश में कहते बी ऑल ईयर्स, ऐसा सुनो कि जैसे कि पूर्ण ध्यान से, पूर्ण मन से, ताकि वो जो सुनाई आ रहा है ज्ञान, चेतन मन शांत हो गया और सीधा अवचेतन में चला जाए। एक घंटे में जो भी सुनते हो उसमें कम से कम एक पॉइंट भी ज्ञान की यदि हमारे अंदर घुस जाए तो जीवन परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, ऐसे बेहद के सेवाधारी आत्माओं को, ऐसे राज्य अलंकारी आत्माओं को, कितना सुंदर शब्द बाबा ने कहा, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, ऐसे सदा सर्व के प्रति शुभ चिंतन में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे सदा सुहाग और तिलकधारी आत्माओं को, ऐसे सदा सेवा के और याद के उमंग में, उत्साह में रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।